زمانوں کی امنگ، باب نمبر 30۔ اس نے 12 کو مخصوص کیا، پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا، اور وہ اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں، اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں۔ مرکز 13:3-14۔ یہ جگہ پہاڑوں کی اطراف میں درختوں کے نیچے گلیل کی جھیل سے کچھ فاصلے پر تھی، جہاں یسوع نے 12 شاگردوں کو بلایا۔ وہیں اس نے پہاڑی وعظ دیا۔ کھیت اور پہاڑیاں یسوع کی دل پسند جگہیں ہوا کرتی تھیں جہاں وہ تعلیم دیا کرتا تھا۔ اس نے زیادہ تر کھلے آسمان تلے منادی کی، کیونکہ جتنی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لیتی تھی اس کو ہیکل وغیرہ میں جگہ دینا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ یسوع کو فطرت کے نظارے بہت پسند تھے۔ ابو البشر نے بھی باغ عدن کے درختوں کے نیچے خدا سے کلام کیا، وہیں یسوع اس سے ملا کرتا تھا۔ بزرگ آدم اور حوا باغ عدن سے نکل جانے کے بعد بھی درختوں اور کھیتوں میں خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہیں پر یسوع ان کو اپنے فضل کی خوشخبری کے ساتھ ملا کرتا تھا۔ یہ یسوع مسیح ہی تھا جو جناب ابراہیم سے ممرے کے بلوتوں تلے ملا اور اس سے گفتگو کی۔ اسی طرح جناب اسحاق کو خداوند مسیح کھیت میں ملا جب وہ دعا کے لیے گیا۔ جناب یعقوب کو بیت اہل میں پہاڑی کے پاس ملا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو مدین کی پہاڑیوں میں، اور بزرگ داوود کو مسیح خداوند میدان میں ملا جب وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہی تھا جس کی ہدایت پر عبرانی لوگ 15 صدیوں تک ہر سال ایک ہفتہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہری شاخوں کی بنائی ہوئی جھگیوں میں گزارتے تھے۔ مگر تم پہلے دن خوش نما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بے دمجنوں لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ احبار 40:23-41۔ اپنے شاگردوں کو تربیت دینے کے لیے یسوع انہیں شہر کے ہنگاموں سے دور کھیتوں اور پہاڑیوں کے پرسکون دامن میں لے گیا۔ اپنی خدمت کے دوران اس نے چاہا کہ لوگ اس کے پاس کھلے آسمان تلے آ کر کلام سنیں۔ کبھی وہ ان کو پہاڑیوں کے آس پاس ہری ہی گھاس پر بیٹھنے کی دعوت دیتا، تو کبھی ندی کے صاف شفاف رواں پانیوں کے پاس۔ یہاں وہ اپنے سامعین کی توجہ مصنوعی چیزوں سے ہٹا کر فطرت کی کاریگری کی طرف لگاتا۔ فطرت کی نشو و نما اور بڑھوتری میں اس کی بادشاہی کے اصول نمایاں ہوتے تھے۔ جب انسان پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کے حیرت انگیز کاموں کو دیکھتے ہیں تو اپنے لیے صداقت کے بیش قیمت اسباق حاصل کرتے، اور فطرت کی چیزوں کے ذریعے یسوع کی تعلیم دہراتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ مل کر اس کی فطرت کا مطالعہ کریں تو ذہن وسیع تر ہوتا اور دل سکون پاتا ہے۔ پہلا کام کرنے کا یہ تھا کہ کلیسا کو منظم کیا جائے تاکہ جب یسوع آسمان پر صعود فرما جائے تو یہ اس کے نمائندوں کی حیثیت سے اس کام کو آگے بڑھائیں جو اس نے اس دھرتی پر شروع کیا تھا۔ ان کی مخصوصیت کسی شاندار ہیکل میں نہیں بلکہ خوبصورت پہاڑ اور ندی کے کنارے ہوئی جسے وہ تاہیات نہ بھلا سکے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بلایا تاکہ وہ ان کو اپنی گواہی کے لیے بھیجے، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا ہے اس کی گواہی دنیا کو دیں۔ ان کی خدمت اس لحاظ سے بڑی اہم تھی کہ خدا کے ساتھ مل کر دنیا کو بچائیں۔ جیسے پرانے عہد نامہ میں 12 بزرگ بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتے تھے، اس طرح 12 رسول کلیسیا کی نمائندگی کرنے کو تھے۔ مسیح یسوع کو یہ بھی معلوم تھا کہ جس کا میں انتخاب کر رہا ہوں وہ کیسے انسان ہے، یعنی وہ کن خوبیوں اور خامیوں کے مالک ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ انہیں کن مصائب کا سامنا کرنا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انہیں کون کون سی ذمہ داری نبھانا ہے۔ اس نے پور رات پہاڑ پر تنہا ان کے لیے دعا میں گزاری۔ جب شاگرد خود کوہ دامن میں گہری نیند سو رہے تھے، صبح بیدار ہوتے ہی اس نے ان کو بلایا، کیونکہ اسے ان سے بہت اہم باتیں کرنا تھیں۔ یہ شاگرد کچھ عرصہ سے یسوع کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ دوسرے شاگردوں کی نسبت یوحنا اور یعقوب، اندریاس اور پترس، فلپس اور نتنی، ایل اور متی उसके ज्यादा करीब रहे थे। उसके बहुत से मौजजात के गवाह भी थे। पतरस और याकूब और यूहन्ना उन सबसे आगे बढ़कर यसू के पहलू में बैठा करता। इसलिए कहा जाता है कि वो शागिर्द जिसको यसू ज्यादा चाहता था। नजात दहिंदा तो सबको प्यार करता था, मगर वो यूहन्ना को दूसरों से ज्यादा चाहता था। वो उम्र में दूसरों से छोटा था और यसू की बातें कबूल करने में ज्यादा फराख दिल था, इसलिए यसू को उससे ज्यादा हमदर्दी थी। इसी वजह से यूहन्ना के जरिए यसू ने अपने लोगों को ज्यादा गहरी रूहानी तालीम पहुंचाई, ज्यादा हमदर्दी थी। इसी वजह से यूहन्ना के जरिए यसू ने अपने लोगों को ज्यादा गहरी रूहानी तालीम पहुंचाई। दूसरे शागिर्दों में फिलपस पहला शख्स था जिसे यसू ने फरमाया, मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना 43:1। फिलपस बैतसदा का बाशिंदा था, जो अंद्रियास और पतरस का भी शहर था। यूहन्ना 44:1। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी सुनी थी और उसे याद था कि यूहन्ना ने यस्सू के बारे ये भी ऐलान किया था कि यह खुदा का बर्रा है। फिलपस सच्चाई का मुतलाशी था, मगर ईमान लाने में वो बहुत ही सुस्त था। बेशक वो यस्सू के हलका में शामिल हो गया था, मगर उसे अभी तक शक था कि आया यसू जाते इलाही है या नहीं। नतनीएल को जब उसने मसीह के मुतालिक बताया तो वो उसे यूसुफ का बेटा यसू नासरी ही समझता है। यूहन्ना 45:1। फिर हम देखते हैं कि जब यसू ने 5,000 को सैर किया, यहां भी फिलपस के ईमान की कमजोरी जाहिर हुई। यसू ने उसके ईमान को परखने की गर्ज से फिलपस से पूछा, हम उनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें? यूहन्ना 5:6। यसू को फिलपस के जवाब पर बड़ा दुख हुआ।
फिलिप्स ने तो यसू की कुदरत देखी थी, उसके असरात को महसूस भी किया था, मगर अभी तक उसमें ईमान की कमी थी। आपको याद होगा, मसीह के मसलूब होने से पहले कुछ यूनानी फिलिप्स के पास आए और दरखास्त की कि जनाब, हम यसू को देखना चाहते हैं। फिलिप्स ने खुद उस मौके को गनीमत जानकर फायदा न उठाया, न उन्हें यसू के पास लाया, न उन्हें यसू के बारे कुछ बताया, बल्कि अंद्रियास को गलीली मुर्दों की दरखास्त के बारे आगाह किया। गोया उसका कलाम पस्त हिम्मती के बराबर था। वो यसू के बारे कुछ भी वसूक से कहते की हिम्मत न रखता था, क्योंकि उसमें ईमान की कमी थी। यूहन्ना 20:12-22। और जब फिलिप्स ने यसू से पूछा, ए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यसू ने जवाब दिया, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। अगर तुमने मुझे जान होता तो मेरे बाप को भी जानते। फिलिप्स ने अपनी कम एतकादी का इजहार करते हुए कहा, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यूहन्ना 5:14-8। फिलिप्स 3 साल से मसीह के साथ रहा था, मगर ईमान लाने में कितना सुस्त और कमजोर निकला।
फिलिप्स की कम एतकादी के बरक्स नतनएल का भरोसा यसु मसीह में बिल्कुल बच्चों के ईमान और एतकाद की तरह खालिस था। वो नहायत साफ दिल और मुखलिस फितरत का शख्स था। ये वही शख्स था जिसके ईमान ने उन देखी हकीकतों को थाम लिया। उन कमजोरियों के बावजूद फिलिप्स यसु के स्कूल में तालिब इल्म की हैसियत से कायम रहा और आसमानी मुअल्लिम ने उसकी कम एतकादी और गबीपन को बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। जब शागिर्दों पर रूल कुदुस नाजिल हुआ तो फिलिप्स एक ऐसा उस्ताद बना जो इलाही तकाजों को पूरा करता था। वो जानता था कि वो किसका कलाम कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। वो उस एतमाद के साथ कलाम करता था कि सुनने वाले कायल हो जाते थे। जब यसू शागिर्दों को उनकी मखसूसियत के लिए तैयार कर रहा था तो यहूदा इस्करियप्ती को यसू ने नहीं बुलाया था, मगर वो खुद बखुद आ टपका। उसने खुद को ऐसे पेश किया जैसे कि वो बड़ा ही मुखलिस और ईमानदार शख्स है, बल्कि उसने यसू को यकीन दिलाया, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यसू ने उससे कहा, लूमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर्द हिरने की भी जगह नहीं। मत्ती 19:8-20। यहूदा इस्करियप्ती ईमान रखता था कि यसू ही मऊदा मसीह है,
और वो जानता था कि शागिर्दों में शामिल होने के सबब वो उसकी नई हुकूमत में आले ओहदे पर फायज हो सकेगा। उसकी इस उम्मीद को खत्म करने के लिए यसू ने उसे अपनी गुर्बत और उसरत और नादारी का हवाला दिया। शागिर्दों की तो दिली ख्वाहिश थी कि यहूदा उनमें शामिल हो। वो वजीहा नौजवान था जिसमें नाज़िम की तमाम खूबियां पाई जाती थीं, बल्कि उन्होंने उसकी यसू के सामने ये कहकर सिफारिश की कि ये तेरे काम के लिए बहुत कारामत साबित हो सकता है। मगर वो इस बात पर हैरान हुए कि मसीह ने उसे कबूल करने में नहायत सर्द महरी का मुजाहिरा किया। शागिर्द इस बात पर सख्त मायूस और बेदिल थे कि यसू मसीह इसराइली क़यादत का एतमान हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। उनके ख्याल में ऐसी बारसूख शख्सियात की मदद हासिल ना करना गलती है। वो सोच रहे थे कि अगर अब यसू ने यहूदा को भी पीछे धकेल दिया तो यकीनन यसू की हिकमत और दानिश में कहीं खराबी है। अंजामेकार शागिर्दों को सब कुछ मालूम हो गया कि क्यों यसू इब्तिदा ही से यहूदा को अपनी शागिर्दी में लेने से गुरेजा था। उसकी तारीख बताती है कि खुदा के कलाम के लिए दुनियावी रगबतें रखने वाले लोग कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। बहरहाल जब यहूदा यसू के शागिर्दों में शामिल हो गया तो उसे यसू की सीरत के मुतालिक उसी तरह आगाही हासिल थी जैसे दूसरे शागिर्दों को। उसने उस इलाही ज़ात की कुदरत को महसूस किया जो बनी नौ इंसान को निजात दहिंदा के करीब खींच लाई थी। वो जो कुचले हुए सर कंडे को नहीं तोड़ता और उठते हुए धुएं को नहीं बुझाता। वो उस रूह को अपने हाथ से दूर नहीं करता जिसमें नूर को पाने की जरा सी भी तमन्ना हो। नजात दहिंदा ने यहूदा के दिल को पढ़ लिया। उसने उसकी बदी की गहराई को भी जांच लिया और यह भी समझ लिया कि अगर इस गहराई से उसे खुदावंद का फजल बचाए तो यहूदा इस्करियत्ती बदी की उस इथा में डूब जाएगा। बस यसू ने उसे अपने हलका में ऐसी जगह रखा जहां वो हर लम्हा मसीह की बेलौस मोहब्बत, खुद इनकारी और जान निसारी को देख सकता था। अगर वो यसू के लिए अपना दिल खोल देता तो खुदा का फजल उसके दिल से खुदगर्जी के भूत को निकाल देता और वो खुदा की बादशाही का वारिस ठहरता। खुदावंद इंसान को उसकी खामियों और खूबियों दोनों के साथ कबूल करके अपनी खिदमत के लिए तरबियत देता है, बशर्ते के वो उससे सीखे और उसके ताबे फरमान रहे। खुदावंद अपने खादिमों को इसलिए नहीं चुनता कि वो कामिल हैं, उनकी खामियों के बावजूद उनका इंतखाब करता है ताकि उसकी सदाकत और पहचान को इस्तेमाल करके उसकी शबी में ढल जाएं। यहूदा के पास भी दूसरे शागिर्दों जैसा कीमती मौका था। उसने भी दूसरे शागिर्दों की तरह यसू से कीमती असबाक की तालीम पाई थी, मगर वो उन सच्चाइयों को अमल में लाने से कासिर रहा। बदी वजह उसे वो हितमत और फहम जो आसमान से हासिल होना थी ना हो सकी। मसीह यसू यहूदा से बड़ी ही नरमी से पेश आया जो उसे पकड़वाने को था। मसीह यसू की नेकी और भलाई की तालीम खुदगर्जी पर कारीजर्ब थी। यसू अक्सर उसके सामने लालच का नफरत अंगेज पहलू पेश किया करता जिससे शागिर्दों को गुमान होता कि वो यहूदा के चाल चलन को आया और उसके गुनाहों की निशानदही कर रहा है। मगर यहूदा न अपने गुनाहों का इकरार करने को तैयार था और ना ही अपनी नाराजगी को तर्क करने पर राजी। वो समझता था कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, इसलिए आजमाइश का मुकाबला करने की बजाय वो धोखादही के कारोबार में मुसलसल आगे बढ़ता गया। यसू उसके सामने एक जिंदा नमूना था और उसको अपना कर वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहर सकता था। मगर यसू की तालीम पर यहूदा ने बिल्कुल कान ना धरा। यसू मसीह ने उसके बेजा लालच पर फौरन लानत मलामत ना की, बल्कि इलाही सब्र के साथ उस गलत शख्स को बर्दाश्त किया और उसे हर मौके पर समझाया कि रास्तकारी का क्या अजर है। उसके बावजूद यहूदा ने उस नूर को ठुकरा दिया जो उसे जिंदगी बख्शने के लिए काफी था। नूर को रद्द करने का यहूदा के पास कोई जवाब ना था। नूर में चलने की बजाय यहूदा ने अपनी खामियों को अपने अंदर छुपाए रखने का फैसला किया। बदी की ख्वाहिशात, बदला लेने की रूह, गंदे घनौने ख्यालात ही उसे मरगूब थे। इसके बाद इबलीस ने उसका कब्जा ले लिया। यूं यूदा यसू मसीह के दुश्मन इबलीस का नुमाइंदा बन गया। जब शुरू में यहूदा इस्करियत्ती यसू के पास आया था, उसमें बाज ऐसी खूबियां थीं जो कलीसिया के लिए बरकत का बायस बन सकती थीं। अगर वो यसु का जवा उठाने के लिए रजामंद होता तो रसूलों का सरदार होता। लेकिन जब उसकी कमजोरियां उस पर आयां की गईं तो उनको दूर करने की बजाय उसने अपना दिल सख्त कर लिया और गर्दनकशी करके अपनी राहें बिगाड़ लीं। यूं वो खुदावंद की खिदमत के काबिल ना रहा।
जब खुदावंद यसु ने शागिर्दों को बुलाया, उन सब में ही बड़ी संजीदा नौइयत की खामियां मौजूद थीं। हत्ता के यूहन्ना, जो निहायत ही हलीम और शाइस्ता माना जाता है, यसु मसा के पास आने से पहले ऐसा न था, बल्कि यूहन्ना और उसके भाई को गरज के बेटे कहा जाता था। जब वो यसु मसीह के साथ खिदमत कर रहे थे, उस वक्त भी देखा गया कि अगर किसी ने मसीह की शान में जरा भर भी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उन दोनों भाइयों का गुस्सा भड़क उठा। बदमिजाजी, नुक्ताचीनी और बदला लेने की रूह यूहन्ना में बदरजा गायत मौजूद थी। वो तो खुदा की बादशाही में अव्वल होने का मुतमन्नी था, मगर यसू से हर रोज हलीमी और सब्र तहम्मुल के दर्स लेने से उसमें बड़ी तब्दीली वाक़ हुई। उसने अपने आप को खाली कर दिया और यसू को अपना लिया। उसने न सिर्फ यसू की तालीम को बगौर सुना बल्कि उस पर अमल भी किया। वो खुदावंद यसू मसीह में मदगम हो गया, क्योंकि उसने यसू का जो उठाना और उसका बोझ बर्दाश्त करना सीख लिया। यसू मसीह ने अपने शागिर्दों की बवक्ते जरूरत गोशमाली भी की। तंबी के बावजूद यूहन्ना और उसके भाई ने यसू को तर्क न किया। यसू ने भी उनकी खताओं और कमजोरियों के बावजूद उनसे अलहदगी इख्तियार न की। वो आखिर तक उसके दुखों और आजमाइशों में शामिल हाल रहे और उसकी जिंदगी से बेश कीमत असबाक सीखे। यसु मसीह की तरफ तकने और उस पर ईमान रखने की बदौलत उनकी जिंदगी तब्दील हो गई। तमाम शागिद आदात और उफ्ताद तबा के लिहाज से एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ थे। मत्ती, महसूल लेने वाला, गसीला शमून, जो रूमी हुक्मरानों के साथ हरगिज तस्फिया न करता, उसके दिल में रूमी हकूमत के खिलाफ हर वक्त नफरत की भट्टी जलती रहती। उसके बाद फराख दिल पतरस, जो बहुत जल्द मुश्तइल हो जाता। यहूदा इस्करियोती, जिसमें कमींगी कोट कोट कर भरी थी। उसके बाद तूमा, डरपोक और शक्की, मगर दिल का खरा था। फिलिपस, शक्की और सुस्त एतकाद, जबकि जब्दी के बेटे मुंह फट थे। अपनी अपनी खामियों के साथ ये सब एक हलका में इकट्ठे रहते थे। उनमें से कोई भी बुराई से खाली न था। ताहम वो सब मसीह में, मसीह के जरिए खुदा के खानदान में सुकूनत रखते थे। मसीह से उन्होंने सीखा कि हमें एक ईमान, तालीम और एक ही रूह में यकजा रहना है। उन पर आजमाइश आती होगी, उन्हें एक दूसरे से जरूर शिकायतें और रंजिशें भी होती होंगी, यकीनन इख्तिलाफ राय भी होता होगा, लेकिन उनके दिलों में यस्सू की मौजूदगी हर तरह की तकरार, इख्तिलाफ राय और नज़ा को ख़त्म कर देती और खुदावन मसीह की मोहब्बत एक दूसरे को यकजा कर लेती थी। शागिर्दों की तरबियत के अख्ताम पर खुदावन मसीह ने उनको अपने पास बुलाया और उनके दरमियान घुटने नशीन हो गया। उनके सरों पर अपने हाथ रखे और मखसूसियत की दुआ मांगी। यूं शागिर्द खुशखबरी की मनादी के लिए मखसूस हुए। खुदावन ने अपनी खिदमत के लिए उन फरिश्तों का इंतखाब न किया जो पाक हैं, बल्कि हम इंसानों को जो दूसरे इंसानों की तरह जज्बात रखते हैं। हमें ये काम सौंपा गया है ताकि बनी नौ इंसान को निजात की राह दिखाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी इंसान तक पहुंचने के लिए बशरियत को पहन लिया, क्योंकि बशरियत और उलूहियत दोनों मिलकर ही दुनिया को बचा सकती थीं। अब भी यीशु ईमान के जरिए हम इंसानों के दिलों में बसता है। यूं उलूहियत और बशरियत दोनों मिलकर निजात के काम को पूरा करती हैं। ज़ाते इलाही के साथ मिलकर ही इंसानी क़ुव्वत बारवर हो सकती है। वो जिसने गलील के मछेरों को दावत दी, आज भी हम इंसानों को अपनी खिदमत के लिए बुलाता है और अपनी कुदरत को उसी तरह हमारे जरिए से उजागर करना चाहता है जैसे उसने पहले शागिर्दों के जरिए अपनी कुदरत के हैरत अंगेज अजायब दिखाए। इसमें कोई कलाम नहीं, वो चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर काम करें।
उसकी दिली तमन्ना है कि हम उससे सीखें ताकि उसकी खिदमत के लायक ठहर सकें। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। 2 कुरिन्थियों 7:4। यही वजह थी कि खुशखबरी की मनादी खताकार इंसानों के सुपुर्द हुई, ना कि पाक फरिश्तों के। लिहाजा वो कुदरत जो इंसानी कमजोरी में जाहिर होती है वो खुदा की कुदरत है, और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है। इब्रानियों 2:5। हमें पाक फरिश्तगान के साथ मिलकर खुदावन मसीह को दुनिया के सामने पेश करना है। पाक फरिश्तगान बड़े इश्तियाक से हमारे तावुन का इंतजार कर रहे हैं ताकि इंसान ही इंसान को बचाने का बड़ा जरिया बने। और जब हम बदल वजान खुद को मसीह के ताबे कर देते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि वो हमारी आवाजों को इस्तेमाल करके खुदा की मोहब्बत को उजागर कर सकें।